नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। सरकार ने कहा है कि भारत के पास कुल 74 दिनों की आरक्षित क्षमता है और कच्चे तेल उत्पाद भंडार और भूमिगत भंडारों में बने विशेष कार्यनीतिक भंडारण को मिलाकर वास्तविक स्टॉक लगभग 60 दिनों का है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने दोहराया है कि भारत में पेट्रोलियम और एलपीजी की आपूर्ति की स्थिति पूरी तरह सुरक्षित और नियंत्रण में है। मंत्रालय ने कहा कि सभी खुदरा ईंधन दुकानों पर पर्याप्त आपूर्ति है और देश में कहीं भी पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की कमी नहीं है। घरेलू रिफाइनरी उत्पादन में 40% की वृद्धि हुई है। मंत्रालय के अनुसार तेल कंपनियां प्रतिदिन 50 लाख से अधिक सिलेंडर सफलतापूर्वक वितरित कर रही है। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने घोषणा की है कि भारत में केवल 2 दिन का पेट्रोल शेष है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की है। इकाई ने सटीक जानकारी की पुष्टि केवल आधिकारिक स्रोतों से ही करने का आग्रह किया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है। श्री रिजिजू ने कहा कि भारतीय जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित रूप से गुजर रहे हैं।
Our ships are passing through Strait of Hormuz.
हमारे कुछ जहाज होर्मुज पार कर चुके हैं और कुछ करने वाले हैं। ये भारत की स्थिति को दर्शाता है। भारत कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हैं जो सभी पक्षों से बात कर सकता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, इजराइल के प्रधानमंत्री, ईरान के राष्ट्रपति और खाड़ी देशों के प्रमुखों से बात की है। भारत चुनौतियों के बावजूद बहुत ही बेहतर स्थिति में है।
शॉर्ट लीडरशिप।
पिछले 6 घंटों में पश्चिम एशिया में संघर्ष और तेज हो गया है। इसराइल ने ईरान के अंदर नए हमले किए हैं और लेबनान में भी अपने अभियान बढ़ाए हैं। इसराइली अधिकारियों का कहना है कि उनकी सेनाओं ने मध्य ईरानी शहर इस्फहान में कई हमले किए और ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड नौसेना के एक वरिष्ठ कमांडर अलीरेजा तंगसेरी के मारे जाने का दावा किया है। इसराइली सेना ने उन्हें होर्मुज जलडमरू मध्य में जलमार्ग को बाधित करने के प्रयासों में एक प्रमुख व्यक्ति बताया। अमेरिका ने ईरान पर दबाव बढ़ा दिया है और चेतावनी दी है कि यदि वार्ता विफल होती है तो और भी गंभीर परिणाम होंगे। पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के बीच महाराष्ट्र सरकार ने वैकल्पिक ईंधन के रूप में केरोसिन के वितरण में तेजी लाने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के लिए 37 लाख लीटर केरोसिन के आवंटन को मंजूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत मार्च और अप्रैल के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के माध्यम से राज्य भर में प्रति राशन कार्ड 3 लीटर केरोसिन वितरित किया जाएगा। राशन कार्ड न रखने वाले परिवार भी उपलब्धता के आधार पर वितरण के पात्र होंगे। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि विधानसभा चुनाव और उपचुनाव तैयारियों के दौरान 400 करोड़ रुपए से अधिक की जब्ती की गई है। आयोग ने कहा कि स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए मतदान वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5,100 से अधिक फ्लाइंग स्क्वाड और 5,200 से अधिक स्थैनिक निगरानी दल तैनात किए गए हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि एक शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की गई है। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार द्वारा केंद्र शासित प्रदेश को 5,000 करोड़ की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि ये सहायता विकास परियोजनाओं को मजबूती प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने संसाधनों की कमी को पूरा करने और मौजूदा राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से अतिरिक्त वित्तीय सहायता मांगी थी। मालदीव के माले में दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप में मौजूदा चैंपियन भारत ने कल पाकिस्तान को 3-0 से हरा दिया। भारत के लिए विशाल यादव ने 1 और ओमांग डोडुम ने 2 गोल दागे। भारत और बांग्लादेश अब सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज ओलावृष्टि के साथ आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने ओडिशा, तेलंगाना, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भी तेज हवाओं के साथ आंधी चलने की आशंका जताई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।